मीरा और गिरधर नागर। हमारे मध्यकालीन भक्त कवियों का प्रामाणिक जीवन वृत्त तो उपलब्ध नहीं, लेकिन उनकी कविता पढ़ते समय कविता में उनका व्यक्तित्व बार बार उभर आता है। वे अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को लिए दिए इष्ट को समर्पित होते हैं। अपने इष्ट की जो मूर्ति ये कवि अपनी वाणी द्वारा गढ़ते हैं, उसमें इनका व्यक्तित्व भी घुला मिला होता है। मीरा ने अन्य महान कवियों की तुलना में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी की तुलना में कम लिखा है, किंतु अपने विषय में उन्होंने जो पर्याप्त संकेत दिए हैं, केवल तुलसी ने ही अपने जीवन के विषय में मीरा से अधिक लिखा होगा। मीरा की कविता में लोकलाज, कुल की मर्यादा को तोड़ने या लांघने की बात बार बार कही गई है। यह कारण नहीं, इसका सामाजिक कारण है। मीरा अपने इष्ट को समर्पित तो होती है, लेकिन इस समर्पित होने की प्रक्रिया में जो विघ्न बाधा आती है, उसका संकेत भी वह दे देती है। यह भी देखने की चीज है कि तुलसी के समान मीरा की कविता में भी दुर्जन खल आते हैं। विषमता का बोध मीरा के यहाँ प्रकट है। कबीर, तुलसी ने अपने समकालीन किसी खल का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया, मीरा ने राणा का नाम लिया है। मीरा की कविता में अमृत विष साथ साथ अक्सर आते हैं। कहा गया है कि उन्हें विष दिया गया था, उन्होंने पी लिया तो अमृत हो गया। पता नहीं यह सत्य है या असत्य, लेकिन इसका प्रतीकार्थ जरूर है। विषपान मीरा का मध्यकालीन नारी का स्वाधीनता के लिए संघर्ष है, और अमृत उस संघर्ष से प्राप्त तोष है जो भाव सत्य है। मीरा का संघर्ष जागतिक वास्तविक है, अमृत उनके हृदय या भाव जगत में ही रहता है। मध्यकालीन समाज में वर्णों को सवर्णों को समान होने के लिए जाति प्रथा से टकराना पड़ता था, तो नारियों को रूढ़िग्रस्तता और छद्म कुल मर्यादा से। भक्ति आंदोलन में आर्थिक समानता की बात नहीं थी, बात केवल भक्ति की दृष्टि से समानता की थी। लेकिन इस भाव जगत की समानता के अनुकूल आचरण करने पर जाति प्रथा और नारी पराधीनता के रूढ़ी रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी। मीरा जब कविता में बार बार लोकलाज, कुल की मर्यादा को तोड़ने की बात कहती हैं, तब वह उसी बाधा का संकेत करती है। ऐसे उल्लेख मीरा के यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे तुलसीदास को जहाँ अवसर मिलता है, भूख, अकाल, महामारी और कामदेव के प्रभाव का उल्लेख कर देते हैं। कबीर जाति जुलाहा मतिकाधीर जैसा उल्लेख कर देते हैं, वैसे ही मीरा लोकलाज, कुल की मर्यादा तोड़ने का अदबदा कर उल्लेख करती है। लोकलाज कुलरा मर्यादा जगमाणिक ना रक्षारी, पद संख्या 17। सात सिंगार बांध पग घूंगर लोकलाज तजनाची, पद संख्या 19। लोकलाज की कारण मानो, पद संख्या 35। लोक कहिया मीरा बावरी सासु कहिया कुल नासीरी, पद संख्या 36। लोकलाज कुलकाण जगत की दई बहाय जस पाणी, पद संख्या 38। थारे कागज जग जन त्यागा लोकलाज कुल डारा, पद संख्या 93। मीरा ने यह भी लिख दिया कि लोकलाज तो मैंने तोड़ दी, लेकिन इसके लिए लोग मुझे बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। सास लड़ती है, ननद खिजाती है, पहरा बिठला दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है ताकि मीरा बाहर न जा सके। हेली मासूई हिरबिन रहियो न जाए, सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहया रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारियो, तालो दियो जड़ाए। सास ननद ही नहीं, लोग भी कड़वे बोल बोल कर हंसी उड़ाते हैं। कड़वा बोल लोक जग बोलिया, करसिया मारी हांसी, पद संख्या 45। अम्बा की डाली कोइल इक बोले, मेरो मरण अरु जग केरी हांसी, पद संख्या 65। सास बुरी है, ननद हठीली है, लड़ लड़ के मुझे ताड़ती है। सास बुरी अर ननद नड़द हठीली, लरी लरी मोही तारी, पद संख्या 169। कहा जा सकता है कि सास ननद ताला चौकी पहरा आदि का उल्लेख उस युग की स्त्रियों के अभिव्यक्ति का मुहावरा था, ठीक है, लेकिन यह तो पता चलता ही है कि मीरा की कविता उस युग के समान नारी मन की व्यवस्था को प्रस्तुत कर रही है। यद्यपि मीरा ने जिस ढंग से यह बात लिखी है, उससे साफ पता चलता है कि यह मुहावरा नहीं, मीरा की बीती है। सास ननद पहरा चौकी ताला मुहावरा है, राणा तो मुहावरा नहीं। सास लड़े मुरी ननद खिजावे, राणा रहे अरिसाए, यह राणा मुहावरा नहीं बल्कि मीरा को पीड़ित करने वाला शासक। मीरा की कविता संबोधित कविता है। वह राणा को अनेक शब्द याद करती है, कभी उसे संबोधित करती है, कभी उसके अत्याचारों का वर्णन करती है। मीरा के आचरण में वह कौन सी बात थी जो राणा को नापसंद थी, जिससे कुल की मर्यादा नष्ट होती थी? मीरा का व्यक्तित्व मध्यकालीन नारी जीवन को देखते हुए इतना असामान्य है कि उनके विषय में नाना प्रकार की कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित रहीं। इतना सत्य है कि उनका गृहस्थ जीवन उनके पति की मृत्यु के कारण छिन्न भिन्न हो गया था। यह भी सत्य है कि वह घर की चार दीवारी में रहकर सामान्य विधवा जीवन ही नहीं बिताना चाहती थी, साधु संगति भी करना चाहती थी। मीरा भक्त थी। भक्त होना न तो बुरी बात है न आपत्तिजनक। यदि वह सभी लोगों की तरह घर में रहकर पूजा पाठ करके भक्ति करके अपना वैधव्य काटती रहती तो राणा को क्या आपत्ति होती। आपत्ति का कारण साधु संगति ही ज्ञात होता है। मीरा केवल भक्त ही नहीं थी, वह राणा कुल की वधु भी थी। वह सामान्य भक्तिन की तरह सामान्य लोगों से मिलती जुलती थी तो राणा कुल की मर्यादा कैसे न भंग होती। मीरा ने लोकलाज कुल मर्यादा की ही इस तरह साधु संगति का भी उल्लेख अपनी कविताओं में अनेकश किया है। वह राणा कुल को श्रृंखला का प्रतीक मानती हैं और इस कुल से बाहर निकलकर दुकाम करना चाहती हैं, साधु संगति करना चाहती हैं और कृष्ण से मिलना चाहती हैं। साधु संगति और कृष्ण मिलन, ये दोनों वस्तुतः एक ही उद्देश्य है। कृष्ण से मिलन का अर्थ भाव जगत में कृष्ण का मिलन, अर्थात साधु संगति में कृष्ण गुण कीर्तन। इस उद्देश्य की पूर्ति राणा कुल के बाहर जाकर सामान्य जीवन में घुलने मिलने से ही हो सकती थी। मीरा ने लिखा, मीरा तो गिरधर बिन देखे कैसे रहे घर बस के। मीरा का अपना कोई नहीं, केवल गिरधर गोपाल है। मीरा ने भाई बंधु सगे साथी सब छोड़ा, साधुओं के साथ बैठ बैठ कर लोकलाज खोती। भक्तों को देखकर वे प्रसन्न होती, जगत को देखकर रोती। आंसुओं से सींच सींच कर उन्होंने प्रेम बेल बोई। राणा ने विष का प्याला भेजा, मीरा ने मगन होकर पी लिया। मीरा को लगन लग गई, अब तो होना है हो। न्यारा रे गिरधर गोपाल दूसरा अड़ा कुया साधा सकल लोक जूया। भाया छाणिया बंधा छाणिया सगा सूया, साधा ठिक बैठ बैठ लोक लाज खोया। भगत देख्या राजी हुया, जगत देख्या रूया। असमा जल सींच सींच प्रेम बेल बूया। दध मथ घृत काढ़ लया डार दया छूया। राणा विश्रयो प्यालो भेजिया पिय मगन हुया। मीरा री लगन लंग्या होड़ा हो जो हुया। इस पद में मीरा ने अपने बाह्यांतर स्थितियों का सम्यक परिचय दिया है। वे इस जगत में अकेली हैं, कोई उनका नहीं है। पति मृत हो चुका है, विधवा के साथ भाई बंधु भतीजे कैसा व्यवहार करते हैं यह विदित है। सभी को मीरा ने बाद में छोड़ा होगा, सभी ने मीरा को छोड़ना उपेक्षित करना पहले शुरू किया होगा। इस जगत को देखकर वे रोती हैं। इस दुखी और असंगत जगत में सार्थकता साधु संगत से भी संभव थी, जिससे कि रिक्त हृदय में हरि को बसाया जा सके। जीवित रहते तो हृदय खाली रह नहीं सकता, कोई न कोई उसमें बसेगा ही। मीरा ने उसमें हरि को बसाया। साधु संगत इसका कारण और इसके लिए आवश्यक था। हरि के प्रति समर्पित हृदय ने बहुत वेदना सहकर और उस सहने की प्रक्रिया में ही प्रेम को पल्लवित किया। राणा इससे नाराज हुए, उन्होंने मीरा को दंड दिया, दुखी किया। लेकिन मीरा पथ की बाधाओं और संकटों को प्रसन्नतापूर्वक सहने के लिए तैयार हैं। इस जीवन की सार्थकता को उन्होंने पहचान लिया है। वह प्रेम में है, उनका साधन साधु संगति है, राणा का महल नहीं। कुमति गई तो उन्होंने साधु संगति ग्रहण की। गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग सांची। साधा संगत हरिसुख वासियों जगसों दूर रहिया, अर्थात मीरा जगत से दूर रहकर साधु संगति में हरिसुख पाती है। मीरा को राणा से यह शिकायत भी थी कि उसके देश में साधु नहीं है, बुरे लोग बसते हैं। थारे देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। मीरा को साधु अच्छे लगते थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि जगत में जिस जगत को देखकर मीरा को रोना आता था, उसमें दुर्जनों की भी कमी नहीं थी, शायद सज्जनों से कहीं ज्यादा संख्या में थे। मीरा ने साधुओं को ही इन दुर्जनों को भी याद किया। मैं सत्संग में ज्ञान सुनती हूँ, दुर्जनों ने यह देखा, देखकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इससे कहने की जरूरत मीरा ने नहीं समझी। कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी, इसका अनुमान करना हम मध्यवर्गीय भारतीयों के लिए, विशेषतः हिंदी क्षेत्र के मध्यवर्गीय भारतीयों के लिए दुष्कर नहीं। यथा स्तृणा तथा वाचा साधुत्वे दुर्जनो जन, लिखने वाले महान करुणामान कवि भवभूति ने इसी देश के लोगों के विषय में यह पंक्ति लिखी थी। दुर्जनों ने जो कुछ किया कहा उसका निवारण मीरा ने गिरधर नागर की छाया शरण में जाकर किया। उद्वेलित लगता है वह काफी थी, इसलिए कटुदा गिरधर नागर भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए, मुंह से निकल ही गया दुर्जन जाकर अंगीठी में जल जाए। सतसंगति माँ ज्ञान सुणय छी दुर्जन लोगा नय दीठी, मीरा रो प्रभु गिरधर नागर दुर्जन जलो ना अंगीठी। लोग कड़वे बोल बोलते हंसी उड़ाते हैं, यह नहीं देखते कि मीरा तो हरि के हाथ बिक गई है, उनकी शरण में चली गई है। कड़वा बोल लोक जग बोलिया, करसिया मारी हांसी, मीरा हरि रे हाथ बिकाणी, जड़म जड़म री दासी। सासू ने कहा मीरा कुल का नाश करने वाली, सासू कहिया कुल नासीरी। मध्यवर्गीय भारतीय समाज की स्त्रियों के पीड़न में स्त्रियों का भी योगदान होता है। सासु पतोहु ननद भौजाई का कल भारतीय स्त्री समाज की बहुत बड़ी विशेषता है, यह संयुक्त परिवार की विशेषता है। सासु बहु ननद भौजाई में कलह की ही नहीं होता, प्रेम भी होता है, किंतु विख्यात कलह ही है। मीरा के जीवन के विषय में जो लोक साहित्य प्राप्त होता है, उससे मीरा ने सासु ननद या राणा के विषय में जो लिखा है वह समर्थित होता है। लोक साहित्य को प्रामाणिक नहीं मान सकते, लेकिन इसका कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। संभावना यही है कि मीरा के साथ जो कुछ घटित हुआ था वह लोक साहित्य के माध्यम से अब तक लोक चित्त में सुरक्षित। डॉक्टर पद्मावती शबनम ने रूपक गायकों की शैली में प्राप्त ऐसे पदों का संकलन किया है जो उनके ग्रंथ मीरा व्यक्तित्व और कृतित्व में प्रकाशित हैं। इन पदों में ऊंदा और मीरा का संवाद कराया गया है। कहते हैं ऊंदा मीरा की ननद का नाम था। डॉक्टर शबनम का विचार है कि ऊदा या ऊदव मीरा की ननद नहीं मीरा के देवर का नाम था। पदों में मीरा को भाभी का संबोधन किया गया है। मीरा को भाभी देवर भी कह सकता था, ननद भी। जो हो, इन संवादात्मक पदों का अध्ययन कम से कम इस बात को प्रकट कर देता है कि कुल कैसा था जिसकी श्रृंखला तोड़कर मीरा बाहर आना चाहती थी। यह भी द्रष्टव्य है कि मीरा ने आत्मनिवेदन के माध्यम से अपनी रचनाओं में जिन स्थितियों को अभिव्यक्त किया है उनका ये संवादात्मक पद समर्थन करते हैं। उदव थाड़े बरज बरज मयहारी, भाभी मानो बात हमारी, राने रोष किया था पर साधु में मत जारी, कुल को दाग लगाए छे भाभी, निंदा हो रही भारी, साधु रे संग बन बन भटको, लाज गमाई सारी, कड़ा घरा में जन्म लियो, छे नाचे दे दे तारी। तुम्हें बरज बरज कर मैं हार गई, भाभी मेरी बात मानो, राणा ने रोष किया था, तुम साधुओं मत जाओ, भाभी कुल को दाग लगता है, भारी निंदा हो रही है, तुम साधुओं के संग वन वन भटकती हो, सारी लाज गंवा दी है, इतने बड़े घर में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम ताली दे देकर नाचती हो। मीरा ने कुछ उत्तर दिया तो उदा फिर कहती है, भाभी बोलो बात बिचारी, साधु को संगत दुख भारी, मानो बात हमारी, छाया तिलक गलहार उतारो, सहिरो हार हजारी, रतन जड़ित पहिरो आभूषण, भोगो भोग अपारी, मीरा जी थे चालो महल में, थाड़ो सोगन मारी। मीरा ने उत्तर दिया, ऊंदा बाई मन समझ जाओ अपने धाम, राजपाट भोगो तुम ही हमसे न तासु काम। ऊंदा ने मीरा को दुनियादारी समझाते हुए कहा, भाभी तुम्हारी जात उत्तम है, यह ऊंच नीच में तुम्हारा बैठना ठीक नहीं, तुम्हें राणा सा वर मिला है जिसका नौ कोट मेराज है, खीर खांड का भोजन करो, दखिनी चीर पहनो, अगर तुम नहीं मानोगी तो बासी कूसी टुकड़ा मिलेगा, खट्टी छाछ मिलेगी, भाभी भूखी मर जाओगी, तुम्हारे भगवान नहीं आएंगे तुम्हें सुखी करने। ऊंचा नीचा बेचड़ा ये भाभी उत्तम तिहारी जात, राणा सोवर पाइयो है भाभी, नौ कूटा बे थारो राज, खीर खांड को भोजन जीमो, भाभी ओढ़ो दिखणी चीर, राणा सोवर पाइयो ये भाभी, सब महलाया थारो सीर, बसिया कुसिया टुकड़ा ये भाभी, और मिलेगी खाटी छाय, रो रो भूखा मरो ये भाभी, नहीं मिलोगे हरि आय। जाति प्रथा, स्त्री पराधीनता, आर्थिक विषमता किस प्रकार परस्पर संबद्ध है यह हमारे अनेक आधुनिक चिंतक नहीं समझ पाते। इन लोक गीतों के रचयिताओं ने समझ लिया था। इनकी यह समझ किताबें पढ़कर नहीं विकसित हुई है, समाज में जो कुछ होता है उसे देखकर आई है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी। जो दुर्जन मीरा को घर में कैद रखना चाहते थे या बाहर निकलने पर निंदित करते थे, हंसी उड़ाते थे, कड़वा बोलते थे, जिनके सिरमौर राणा थे, पता नहीं ये राणा कौन थे। इन्हें मीरा ने अपनी रचनाओं में अनेक बार संबोधित किया है। कई पद तो इन्हीं को संबोधित है, फिर भी पता नहीं चलता कि यह मीरा के रिश्ते में क्या लगते थे। पति तो नहीं ही थे, क्योंकि यह मत प्राय मान्य है कि मीरा के पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी। मीरा ने अपने एक पद में ऐसा संकेत भी दिया है कि वह पति की सेवा करने वाली पत्नी को बहुत आदर की दृष्टि से देखती है। आगे चलकर हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि मीरा पति प्रेम को सदाचार मानने वाली महिला थी। मीरा के विषय में कभी कभी जो अतिरिक्त आधुनिक चिंतन किया जाता है वह बेहुदा है। ऐसे छद्म आधुनिक विचारक यह समझ नहीं सकते कि मनुष्य शारीरिकता से ऊपर उठ सकता है। मीरा के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जैसे छद्म आधुनिक वैसे छद्म भक्तखंड। मीरा को राणा के साथ साथ एक अतिचारी मूल्यांध अतिक्रांतिकारी से भी टकराना पड़ा था। कुछ लोगों के सोचने समझने में औदार्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता, ऐसे एक विषयी साधु मीरा के पास पहुंचे। विषयी कुटिले एक भेषधरी साधु लियो, कियो यो प्रसंग मोसो अंग संग लीजिए। अंग संग कीजिए, आज्ञा मोह को दई आप लाल गिरधारी, अहो शीश धरी लई करी भोजन हूँ लीजिए। असभनी समाज में बिछाए से जी बोली बोल लियो, सक अब कौन से निशंक रस भीजिए। सेतु मुख भयो विषय भाव सब गयो, नयो पयन पय आय मोको भक्ति दान दीजिए। वर्तिक प्रकाश में इस पद का गद्यानुवाद इस प्रकार किया गया है। एक दिन की विचित्र वार्ता सुनिए। एक कुटिल विषयी दुष्ट साधु का वेश धारण किए हुए आके आपसे बोला कि मुझे गिरधर लाल ने स्वयं आज्ञा दी है कि तुम जाके मीरा को पुरुष संग का सुख दो, सो तुम मुझसे अंग संग करो। श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा मेरे शीश पर है, प्रथम आप प्रसाद भोजन तो कर लीजिए, मैं सेवा को उपस्थित हूँ। आप संतों के समाज के मध्य में सेज बिछवा कर उस विषयी से बोली कि आप पर्यंग पर सुखपूर्वक विराजी और मुझे जो आज्ञा हो, जब प्रभु की ही आज्ञा है ही तो अब किसकी शंका है, आइए निशंक दस रंग में डूब के अंग संग कीजिए। श्री मीरा जी के वचन सुनकर उसका मुख फीका पड़ गया, विषय भाव तज आपके चरण में गिर पड़ गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे अब हरि भक्त दान दीजिए। कोई भी ऊंची साधना असामाजिक नहीं हो सकती, वह नितांत व्यक्तिगत या समाज निरपेक्षी नहीं हो सकती, संयम साधना ही की पहली शर्त है। लेकिन जिस दुर्जन ने मीरा को दंडित और सबसे ज्यादा पीड़ित किया था वह राणा थे। कहते हैं मीरा का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीरा मेड़ते से अपने ससुराल मेवाड़ आकर प्रथानुसार महल में मेड़तड़ी कहला कर प्रसिद्ध हो चली। उनका वैवाहिक जीवन भी अपने पति के साथ सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, परंतु कुंवर भोजराज अधिक दिनों तक जीवित न रह सके। पतिदेव का वियोग होते ही उन्होंने सारे लौकिक संबंधों के बंधन सहसा छिन्न भिन्न कर दिए और चारों ओर से चित्त हटाकर अपने इष्ट देव के प्रति वे और भी अनुरक्त हो गई। चतुर्वेदी जी का यह मत संगत और मान्य लगता है। मीराबाई पति प्रेम का आदर्श निभाने वाली महिला थी, वह कोई श्रृंखल या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असामान्य महिला नहीं थी। मीरा ने लिखा, छैल वीराणो लाख को हे अपड़े काजन होई, ताके संग सिधरता है भला न कहसी कोई, वर हीणो अपनो भलो है कोढ़ी कुष्ठी होई, जाके संग सिधरता है भला कहे सब लोई। मीरा को पीड़ित करने वाले राणा उनके पति नहीं उनके देवर विक्रमाजीत सिंह थे। विक्रमाजीत सिंह के गद्दी पर बैठने के समय तक मीराबाई के पिता रतनजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। मीरा निसंतान थी और देवर उदंड तथा परपीड़क था। महाराणा विक्रमजीत सिंह यूं भी अयोग्य और छिछोरे शासक थे, वे सहिष्णु सामंती प्रवृत्ति के प्रतीक थे। मीरा को उन्होंने ही पीड़ित किया था। मीरा की कविताओं में संबोधित राणा महाराणा विक्रमजीत सिंह हैं। राणा पर ही आरोप लगाना भी ठीक नहीं। वर्ण व्यवस्था जाति पाति का ऊंच नीचपन नारी पराधीनता की जो सामाजिक परंपरा उस समय विद्यमान थी, उसमें देवर शासक अपने युवती भाभी को साधु संगति कैसे करने देता। सामंती व्यवस्था नारी को मुख्यतः शरीर ही समझती है। पृथ्वी और नारी दोनों भोग्या है। पृथ्वी माता है या आदर्श सामंत का नहीं होता, उसका आदर्श है वीर भोग्या वसुंधरा। इसलिए राणा उस संकुचित और असहिष्णु व्यवस्था का प्रतीक थे। वह खुद अच्छे या बुरे थे, इस पर किसी बहस की जरूरत नहीं। राणा से संबंधित या राणा को संबोधित जो पद मीराबाई ने रचे हैं, उनमें व्यक्तिगत कटुता का भाव मौजूद है। वह उनका अनुभव था। मीराबाई ने विपुल साहित्य की रचना नहीं की, फिर भी उनकी रचनाओं में आत्मकथनात्मक उल्लेख बहुत अधिक है। लगता है कि भक्त कवियों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक विषम अनुभव वाला था। दुर्जन उल्लेख भी सबसे ज्यादा तुलसी और मीरा के यहाँ ही है। अस्त, मीरा बहुत निर्भीक निडर रही होंगी। हम जानते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी में उदयपुर की राणा कहना न मानने वाली विधवा के साथ क्या सलूक कर सकते थे। ऐसे अवसरों पर अच्छे लोग भी, ईमानदार लोग भी विनय चातुर्य एवं नीति से काम लेते हैं। अन्य संत भक्त कवियों ने भी तत्कालीन शासकों सामंतों की उपेक्षा की आलोचना भी की है, लेकिन नाम लेकर बिल्कुल नहीं। तुलसी ने लिखा, जांचे को नरेश, देश देश को कलेश करें। देश को कलेश कर देने वाले नरेश से कौन याचना करे, लेकिन कौन सा नरेश देश को क्लेश पहुंचा रहा है यह नहीं लिखा। मीरा को एक नरेश क्लेश पहुंचा रहा था। उन्होंने साफ लिखा, सिसौदिया रूठ कर मेरा क्या कर लेगा। राणा रूठेगा तो अपना देश अपने पास रख लेगा, लेकिन हरि के रूठने से तो मैं कुमला जाऊंगी। सिसोद्यो रूठियो मारो काई कर लेसी, राणो जी रूठिया बारो देश रखांसी, हरी रूठिया कुमलास्या होमाई। राणा तुम उसे बैर क्यों रखते हो, तुम तो आदमियों में इतने गुणहीन लगते हो जैसे वृक्षों में कैर का वृक्ष। राणा जी ख्याने राखो मासु बैर, थे तो राणा जी माने इसणा लागो जो वृक्षन में कैर। मुझसे हरि के बिना नहीं रहा जाता। सास लड़ती है, ननद खिजाती है, राणा क्रुद्ध है, उसने पहरा बिठा दिया है, चौकी बिठा रखी है, ताला जड़वा दिया है। मीरा की कविता का परिवेश सीमित और व्यक्तिगत है, लेकिन वह इस व्यक्तिगत और सीमित परिवेश को तोड़कर बाहर आना चाहती है। बाहर आने से रोक की जाती है। बाहर न आ पाने की व्यथा का वर्णन चित्रण करती है तो परिवेश अपनी विषमता से युक्त बाह्य समाज का संकेत भी कर देता है। मीरा ने विविधता की सृष्टि की असंगति के विषय में एक पद लिखा है। यह विषय मध्यकाल का काफी प्रिय विषय प्रतीत होता है। प्रसिद्ध पंक्ति है, नाम चतुरानन पय चूकते चले गए। मीरा ने लिखा, मृग के दीर्घ नयन है, मारा मारा फिरता है मृग जाल देखकर, बुकले को उजले पंख, कोयल काली, नदी का जल निर्मल, समुद्र का खारा। सिंहासन पर मूर्ख बैठे हैं, विद्वान द्वार द्वार मारे फिरते हैं। फिर लिखा, राणा भक्तों का संहार करता है। मूर्ख जन सिंहासन राजा, पंडित फिरता द्वारा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संघारा। मूर्ख सिंहासनासीन है, ऐसी सीधी और कट उक्ति भक्त कवियों में से कम ने ही की होगी। मीरा को अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा सिंहासनियों की मूर्खता को अनुभव करने का मौका अधिक निकट से मिला था। उन्होंने इस मूर्ख राजा की मूर्खता प्रत्यक्षता झेली थी। सिंहासनासीन मूर्ख ही नहीं, अन्यायी भी है। उसमें मूर्खता और निष्ठा का विरल संयोग है। वह मूर्ख भी है और भक्तों का संहारक। हिंदी में लिखने वाले कई लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक इतिहास की तरह साहित्यिक इतिहास को भी सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों का मत है कि भक्त कवि विधर्मी शासन यानी मुस्लिम शासन के विरुद्ध थे। मुस्लिम शासन के विरुद्ध होना एक बात है, और शासन के विरुद्ध केवल इसलिए होना कि वह मुस्लिम है दूसरी बात। ऐसे साहित्य विचारकों का बहुत जोर इस बात पर है कि तुलसी ने रावण या राक्षसों का जो रूप खींचा है वह मुगल शासक का है। मुगल शासक भी अत्याचार करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस समय देश में अनेक हिंदू सामंत शासक भी थे, वे कैसे थे? इसके विषय में विचारक कुछ नहीं करते। तुलसी ने राक्षसों के विषय में लिखा है कि रावण के राज्य में राक्षसों के उपद्रव के कारण न कहीं भक्ति रह गई, न जप, न तप, न ज्ञान। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान। मीरा ने गिरधर नागर से निवेदन करते हुए लिखा है कि राणा भक्तों का संहार करता है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संहारा। स्पष्ट है कि रावण या राक्षस कौन है भक्त कवियों की निगाह में? सामंती शासक मात्र रावण और राक्षस है? हिंदू मुसलमान दोनों रावण और राक्षस बन सकते हैं? रावण ब्राह्मण था, उत्तम कुल कुलत से करनाती मुगल या मुसलमान तो वह नहीं था। ऐसे विचारकों की पंक्ति में वे विचारक भी आते हैं जो मुगल शासकों की आलोचना करने वालों को सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। निराला ने तुलसीदास में लिखा, शासन करते हैं मुसलमान या मुगल दलबल के जलध्यान। बस शीघ्रगामी चिंतकों ने घोषित कर दिया, निराला में भी सांप्रदायिकता है। यह निर्णय भी इतिहासबोध के अभाव के कारण है।